अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़िक्र नज़र और मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन महदी। ख़वातीन हज़रात, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने बरतानिया में रहने वाली मुस्लिम ख़वातीन के अमली सियासत में इस्लामी असूलों के मुताबिक हिस्सा लेने पर गुफ्तगू की थी। आज के प्रोग्राम का मौजू भी हमारा मगरबी माशरे और बरतानिया में रहने वाली मुस्लिम ख़वातीन के मुतालिक ही होगा, लेकिन ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में। मैं चाहूँगा कि हम आज अपने स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से, जो ख़वातीन यहाँ पर रहती हैं बरतानिया में और दीगर मगरबी ममालिक में, उनके लिए जो तफरीही सहूलतें मौजूद हैं उन पर गुफ्तगू की जाए और ये मालूम किया जाए कि इन तफरीही सहूलतों को किस हद तक इस्लामी असूलों के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। मेहमानों का तारुफ करवाना चाहूँगा। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं स्टूडियो में सैयदा महक फातिमा रिजवी, अस्सलामु अलैकुम महक, और मेरी दूसरी गेस्ट हैं ज़ाकरा सैयदा ज़हरा ज़ैदी, अस्सलामु अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। महक, चाहूँगा आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। मगरबी माशरे में अमूमी तौर पे समझा जाता है कि अगर खातून हैं, मुसलमान खातून हैं और उन्होंने हिजाब किया हुआ है, तो उनके लिए शायद जो इस्लामी जो एक्टिविटीज़ हैं, मसलन कुरान और नमाज, उसके अलावा शायद तफरी सहूलतें कोई मौजूद ही नहीं है, क्योंकि इन ममालिक में ज़्यादातर जो मगरबी ख़वातीन हैं उनके हिसाब से तमाम सहूलतें बनी हुई हैं। तो आप क्या हमारे जो प्रोग्राम देखने वाले उन्हें बताना चाहेंगी कि क्या क्या सहूलतें ऐसी मौजूद हैं जो कि इस्लामी असूलों के मुताबिक रहते हुए हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं?
बिल्कुल, इस तरह की काफ़ी सहूलियात यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि तफरी हर इंसान के लिए, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, ज़रूरी होती है उसको, उसके आराम और सुकून के लिए। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं मुख्तलिफ ऐसी तफरीहात हैं कि जो इस्लामी इकदार के अंदर रहते हुए औरत अपने हिजाब के अंदर रहते हुए उन चीज़ों से लुत्फंदोज़ हो सकती है और उनका फ़ायदे उठा सकती है। मिसाल के तौर पे वो ख़वातीन जो वर्जिश करना चाहती हैं और अपने आप को सेहतमंद रखना चाहती हैं, वो जिम जा सकती हैं। इस तरह के कई जिम मौजूद हैं कि जहाँ पे मुकम्मल ख़वातीन के लिए एक अलग सेक्शन बना हुआ था, या वो मुकम्मल सिर्फ ख़वातीन के लिए ही होता है, या कोई ऐसा वक्त होता है जिसमें सिर्फ ख़वातीन आ सकती हैं और वो अपने हिजाब के साथ रहते हुए वहाँ पे अपनी वर्जिश वगैरह कर सकती हैं, अपनी सेहत का ख्याल रख सकती हैं। इसके अलावा स्विमिंग पूल्स हो गए, यार वहाँ पे स्विमिंग के लिए ख़वातीन भी जा सकती हैं, उसमें भी हिजाब का ख्याल रखते हुए कुछ ऐसे औकात हैं जिनमें ख़वातीन सिर्फ होती हैं मौजूद और वहाँ पे ख़वातीन जा सकती हैं। या दूसरे तफरीही मुकामात जैसे कि कभी कभी मीना बाजार वगैरह, या फन फेयर जो बच्चों के लिए लगाए जाते हैं, साथ में माएँ उनकी जा सकती हैं और वहाँ पे। उसके अलावा पर्दे की चूंकि ममानियत नहीं है, तो किसी भी ओपन पार्क में या आउटडोर ख़वातीन जिस दिन मौसम अच्छा हो और यहाँ का मौसम इजाज़त दे, तो बच्चों के साथ और फैमिली के साथ जाके कुदरत के नज़ारों से भी लुत्फंदोज हो सकती हैं।
सही वजह फरमाया। अगर मौसम की आपने बड़ी जो है वो दिलचस्प बात की, अगर मौसम इजाजत दे, यहाँ तो दिन में चार चार दफा मौसम बदला होता है और कोई दिन ही शायद ऐसा गुजरता हो कि जहाँ पे सारा दिन एक जैसा मौसम रहा। बहरहाली साहिबा, मैं चाहूंगा कि आपको गुफ्तगू में शामिल करें और आपका कोई, क्योंकि यहाँ आप काफी अरसे से रह रही है, मैं चाहूंगा आपने वो दौर भी देखा है यहाँ पे कि जब मुसलमान हिजाब के साथ, तो बड़े दूर की बात, अगर पता भी लग जाता था कि ये डिफरेंट मुल्क की खातून हैं तो उनको भी शायद हिकारत, तो सख्त लफ्ज हो जाएगा, लेकिन नापसंद किया जाता था। और फिर एक दौर आया कि आहिस्ता आहिस्ता हिजाब भी यहाँ पे शुरू हुआ और अब हम देखते हैं कि हिजाब माशाल्लाह लंदन में हमें बहुत ज़्यादा नज़र आता है, बल्कि नकाब भी अब तो बहुत यहाँ पर नज़र आता है। तो आप क्या समझती हैं कि कहीं हिजाब या नकाब आपकी एक्टिविटीज़ में कभी रुकावट बना, कि आपने अगर कोई जिम जाके वहाँ पे एक्सरसाइज करनी हो या कभी जो है वो औरतों के साथ स्विमिंग सेशन में जाना हो, तो वो कभी प्रॉब्लम बना हो आपके लिए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया हुसैन मेहदी। बल्कि आपने कहा उस वक्त से, बल्कि मेरी वालदा बताती हैं मेरी पैदाइश से पहले कि जब वो यहाँ पर बरतानिया में आए, तो उस वक्त अगर कोई शलवार कमीज में बाहर आ जाता था तो उसे बहुत यानी कि ये स्लीपिंग सूट में बाहर आ गए हैं, और
सही
कुछ इस तरीके के अल्फाज और जुमले कैसे जाते थे। हमारी वालदा भी उस वक्त जो लिबास पहनती थी उस तरीके का, अबाया वगैरह तो नहीं होती थी, लेकिन पाकिस्तानी स्टाइल का लंबी सी वो पहन के, और फिर मफलर की तरह से स्काफ को पूरा प्रॉपर तरीके से, यानी गोरा स्काफ और ऐसे लपेट के, ताकि पर्दा भी रह जाए और ये भी ना रहे। नकाब का तो सवाल ही पैदा नहीं होता
बिल्कुल
था उस
सही,
वक्त।
बिल्कुल सही,
बल खैर, पर्दा भी इस्लाम में इतना ही है वाजिब कि जितना अल्लाह सुब्हान ताला आपको नमाज में या हज के एहराम में देखना चाहता है। अगर मुस्तहबात में से अगर आपको कहीं ऐसी कंडीशंस हैं, तो चेहरे का पर्दा नकाब की सूरत में आप कर सकते हैं। और जब से लेकर अब तक, फिर जमाने की इतनी तेजी के साथ जो तब्दीलियां हुई, और आज हम अपने इसी प्रॉपर हिजाब के अंदर इसी तरीके से सारे काम करते हैं। खास तौर के ऊपर हुसैन मेहदी, बल्कि जो चीज मुझे यहाँ बरतानिया में नजर आती है, वो मुझे सिवाय ईरान के इस्लामिक कंट्री के बाकी किसी इस्लामिक कंट्रीज में उस लेवल की वो चीजें ही मौजूद नहीं है।
सही,
जैसे पिछली दफा मेरा जाना हुआ ईरान, तो वहां पर जामतुल जहरा, उसका अपना बकायदा लेडीज का स्विमिंग पूल है, लेडीज का जिम है, तफरियात के मुकाम है, खवातीन वॉलीबॉल खेल रही हैं, खवातीन के पूरे पूरे जगहें हैं कि जहां पर उनकी तफरी एक्टिविटीज हैं। अब यहाँ आप बरतानिया की बात कर रही हैं, बाकी कर रहे हैं इस्लाम और इस्लामी
बाकी
ममालिक
सब
में तो
ममालिक
नहीं,
में नहीं
नहीं
है ऐसे,
बाकी
बिल्कुल
सब
सही,
में मुझे, क्योंकि
बिल्कुल
बहुत
सही।
सारी जगह जाना हुआ, सऊदी अरब
बल्कि
बारहा।
वहां अगर आप कलामी माफ, अगर आप वहां पे ये तذکرہ कर दें कि हमने हिजाब में रहते हुए कोई एक्टिविटी करनी है, तो शायद उसे मायूब समझा जाता है।
बिल्कुल ऐसे ही है, यानी बहुत सारे स्टोर मैंने तो कुछ ममालिक में ऐसे देखे एक्सट्रीमिस्ट के, वहां खवातीन अंदर नहीं जा सकती हैं।
सही,
तो उस जगह के ऊपर मुसलमानों में इस्लाम को क्या खवातीन को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है,
बिल्कुल
बल्कि यहाँ पर अब तो इस हद तक है, और बहुत सारी उन इदारों को मैं पर्सनली खुद भी जानती हूँ, और मेरे बहुत सारी जो खवातीन दोस्त हैं उन जगहों पर जाती भी हैं, कि अगर जिम है तो उसमें बकायदा टाइमिंग्स हैं कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक ये सिर्फ खवातीन के लिए वक्त एलोकेट है, और उसमें जो कैमरे भी लगे हुए हैं उस वक्त उन कैमरों को भी बंद कर दिया जाता
सही।
है, और कोई मेल कोई आदमी उस जगह में उस एरिया में दाखिल नहीं हो सकता। इसी तरह से स्विमिंग पूल का भी ये आलम है कि उसमें जो टाइमिंग फिक्स है खवातीन के लिए, उसमें वो आजादाना जाकर स्विमिंग करें। जिम है, जितनी भी एक्टिविटीज है, सोना है, जकूजी है, और वहां पर सिर्फ लाइफ गार्ड खातून होगी, और वहां पर भी इवन के वो सिक्योरिटी के कैमरे हैं वो भी टर्न ऑफ कर दिए जाते हैं। तो
सही,
मैं समझती हूँ कि मुझे तो ग्रेजुअली जू जू जमाना गुजर रहा है, और मुसलमान खवातीन एक्टिव हो रही हैं इस मामले से कि अपने राइट के लिए बोलती हैं, और ये लोग इनको अकोमोडेट करते हैं, जगह देते हैं, जो कि इस्लाम के उसूल हैं। हमें वो इस्लामिक कंट्रीज में सिर्फ चंद एक की जगह के अलावा अक्सरियत में ये चीजें नजर नहीं
नहीं
आती
आती।
हैं।
और बिल्कुल वजह आपने फरमाया कि मेरा भी ईरान जाने का इत्तेफाक हुआ, और मुझे इस बात को जान के बड़ी खुशी हुई कि वहाँ पे जितनी सहूलतें मर्द हजरात के लिए हैं, उतनी ही औरतों के लिए जो है वो रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ का ख्याल रखा गया है। वहीं जिम है, उसमें ख़वातीन के लिए भी अलग सेक्शन है, मर्दों के लिए भी अलग सेक्शन है। महक, मैं चाहूँगा कि बरतानिया के हवाले से अगर हम देखें, तो एक और जो हमें इस टाइम मसला पड़ा हुआ है वो है इंटीग्रेशन का, मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ शामिल होने का। और आपको मालूम है कि वो चल रहा है बहुत ज़्यादा चक्कर यहाँ पे इस्लामोफोबिया का, वो कोई प्रोग्राम ही शायद ऐसा होता हो जिसमें इस्लामोफोबिया की टर्म ना यूज़ होती हो, क्योंकि जो अच्छे अचीवमेंट्स हैं मुसलमानों की वो तो कभी मेन मीडिया पे आती नहीं है, और कोई एक बुरा काम हुआ है उसे तमाम मीडिया ने उछाल दिया। बल्कि मैं हैरान होता हूँ कि जो जो यहाँ पे आम आदमी जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनमें तो इस हद तक हमारी स्टीरियोटाइपिंग की जाती है कि अलमान हलफीज, उसे पढ़ के तो ऐसे लगता है कि 2050 तक शायद बरतानिया में शरिया कायम हो जाएगी। तो इतना खतरनाक, और वो वाली शरिया, वो असली दीन इस्लाम की शरिया नहीं, वो उनकी शरिया जिनका मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो आप क्या समझती हैं कि हमारी खवातीन यहाँ पे कुछ ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं या ऐसी रिक्रिएशन के मौाक़े हैं कि जहाँ पर वो दूसरी जो खवातीन हैं उनके साथ भी शामिल हों जिनका दूसरे मजहब से ताल्लुक है,
जी
ताकि उनको हमारा मजहब समझने में आसानी हो।
बिल्कुल, इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं जिसमें मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम लोग भी शरीक होते हैं। जिस तरह के जैसे यहाँ पे लोग मौसीकी से बहुत शगफ रखते हैं और कॉन्सर्ट्स में जाते हैं, तो इस तरह से जब पाकिस्तान से या मुस्लिम ममालिक से समी यूसुफ की तरह के लोग यहाँ पे आते हैं और वो नातिया अशार और हम्द की सूरत में कलाम पेश करते हैं, तो वो उसे हर कोई पसंद करता है और सब उससे लुत्फानंदोज होते हैं। तो एक ऐसा पैगाम जा रहा है कि मुसलमानों की तरफ से कि मुसलमान भी आम इंसानों की तरह इंसान हैं, आम इंसानों की तरह जिंदगी बसर करते हैं, उन्हीं की तरह खुश होते हैं और उन्हीं की तरह गम भी मनाते हैं।
सही।
तो बिल्कुल इस तरह के हो रहे हैं लेकिन कम हो रहे हैं, थोड़े ज्यादा होने चाहिए, थोड़े बड़े पैमाने पे होने चाहिए और एक दावत आम होनी चाहिए कि हर किसी को मालूम हो कि एक इस तरह का फंक्शन या कोई जैसे मीना बाजार लगते हैं, तो खाली ये उन जगहों पे लगते हैं या उन इमाम बारगाहों में कहीं पे जहाँ सिर्फ अपनी एशियन खवातीन अपनी कम्युनिटी के लोग आते हैं। अगर ये बड़े पैमाने पे हों और सबको दावत आम हो तो एक अच्छा मैसेज मुसलमान खवातीन की तरफ से या आम मुसलमानों की तरफ से जा सकता है।
बिल्कुल सही। ज़हरा ज़ैदी साहिबा, महक ने तस्करा किया, ज़िमनी तस्करा किया मौसीकी का, लेकिन इन्होंने जाहिर सी बात है फिर उसे रिलेट किया कि जो हमारे यहाँ पे इजाज़त है। मैं चाहूँगा कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मौसीकी के हवाले से एक बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है कि कौन सी मौसीकी हलाल है, कौन सी हलाल नहीं है। कहीं कहा जाता है कि दफ़ हलाल है, कहीं कहा जाता है वो नहीं हलाल है। तो वो कोई कहता है कि उस टाइम क्योंकि दफ था तो दफ इस्तेमाल किया गया, आज उसकी जगह कई इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। तो ये क्या, इसमें क्या चीज़, मैं चाहूँगा कि क्या जो है वो अलाउड है और क्या नहीं है। और अगर मौसीकी को कुछ लोग कहते हैं ये रूह की ग़िज़ा है, तो अगर इस्लाम में इजाज़त नहीं है, इसका कोई अल्टरनेट दिया जाता है?
बहुत शुक्रिया हुसैन मेहदी। यहाँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे जवाब अपने अंदर
बिल्कुल
लिए
सही।
हुए
मैं
है, और चूंकि इस डिबेट में मैं समझती हूँ कि अगर कोई आलम दीन इसका स्पेसिफिक प्रॉपर जवाब दें तो मेरे कंधों पर बोझ नहीं रहेगा, लेकिन फिर
अच्छा
भी थोड़ी सी बात जरूर मैं कहूंगी कि वो म्यूजिक के जो इंसान को गाफिल कर दे वो हराम है। इसके अलावा दफ की सूरत और कुछ चीजें इस अंदाज में कि जो हजूर और उनकी आल मुबारक की शान में बयान की जाती है, शायरी की जाती है, और जहाँ कुछ गले की कुछ ऐसी साउंड है कि जिसके लिए खवातीन के लिए ममानियत है, मर्द हजरात तो उसमें कुछ न कुछ उनका पार्टिसिपेट हो सकता है। और इस तरह से कुछ इस तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है कि जिनको बैन किया गया है। बल्कि मैं तो एक जगह ये भी पढ़ रही थी कि जो इस तरह का म्यूजिक है कि जिसमें कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती है, उसमें तो पॉप ने भी ये बात कही कि वो इवल म्यूजिक है।
सही।
तो इस्लाम के अलावा हमें दूसरे मकतबे फिक्र के लोग भी ये कहते हैं कि ये तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसमें इस्लाम इस बात की तरफ मुतवज्जा करवाता है कि इस तरह का म्यूजिक कि जो इंसान को गाफिल कर दे और उसका वजूद थरकने लगे तो उसे उसकी तरफ नहीं जाना
सही
चाहिए।
सही
हाँ, अगर कोई जिक्र हजूर करम और
सल्लल्लाहु
उनके जिक्र में हो रहा है तो अगर उसमें सर भी धुनने लगता है तो उसमें कोई मजायका नहीं है।
शुक्रिया।
मैं एक जुमला यहाँ पे, अगर आपकी इजाजत हो।
मैं यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे से जब वापस आएंगे तो फिर मैं आपकी तरफ ही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखूंगा। गुफ्तगू जारी रहेगी हमारी, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा।
बदल दे मेरा रास्ता, दिल बदल दे
मौला।
सुनो मैं नाम तेरा धड़कनों में, या मजा आ जाए मौला दिल बदल दे, या रहूं बैठा मैं अपना सर झुका कर, या सुरूर ऐसा अता कर दिल बदल दे, या खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, या मौला खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे।
खुश आमदीद। ख़वातीन और हज़रात, वक्फे पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगु हो रही थी ज़हरा ज़ैदी साहिबा से मौसीकी के हवाले से कि किस मौसीकी की इजाज़त दी गई है इस्लाम में और किससे मना फरमाया गया है। बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन दी आपने और मुझे उम्मीद है कि जो ख़वातीन और हज़रात हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उन्हें ज़रूर इससे इस्तफादा किया होगा। ज़हरा ज़ैदी साहिबा, गुफ्तगु थोड़ी सी मैं चाहूँगा कि हम इसे वापस फोकस करें बरतानिया में जो, और ख़ास तौर पर मग़रिबी ममालिक में जो ख़वातीन रह रही हैं मुसलमान ख़वातीन, उनके हवाले से कि देखिए, जैसे आपने तस्करा किया कि जब अगर आप किसी जो है वो इवेंट में जाते हैं जहाँ पे बहुत फास्ट म्यूज़िक चल रहा है तो वहाँ पे बिला शुबा आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसे आप कैसे अपने आप को अलहदा रखें, तो क्या ऐसी चीज़ें कुछ हमारे सामने हैं मसलन इनके अलावा क्या कुछ किया जा सकता है? जो मेरे कहने का मकसद है वो ये कि इन चीज़ों के अलावा क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हमें इस्लाम इजाज़त देता है।
इस्लाम हर उस चीज़ की इजाज़त देता है कि जिससे इंसानियत का इफ्तिखार, उसका मोरल बढ़ रहा हो। और जहां आप ये म्यूज़िक की बात कर रहे हैं कि अक्सर आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई गाड़ी भी आपके पास से लाउड म्यूज़िक के साथ गुजर रही हो तो जमीन भी दहल रही होती है। तो सोचिए जो उसमें अफराद बैठे होंगे उनके दिलो दिमाग की क्या कैफियत होगी, उसमें वो उस काम की तरफ कैसे कंसंट्रेट करेंगे। तो इस्लाम किसी चीज की तरफ अगर बैरियर लगाता है तो उसमें सबसे पहली प्रोटेक्शन उस इंसान की खुद की है। अब उसमें इस्लाम किसी सूरत में नहीं रोकता है कि कहीं पर ये कहा गया, लेकिन यही चीजें कि एक लिमिटेड और जो चीज भी है वो उस इंसान की बेहतरी के लिए है। हर चीज की इजाजत है और सुस्ती, अगर इंसान बैठ जाएगा एक्टिव नहीं होगा तो उसकी जिंदगी जल्दी खत्म हो जाएगी बनिस्बत उसके कि जो लोग एक्टिव लोग होंगे, जो प्रैक्टिकल लोग होंगे, जो घर में बाजार में हर जगह इनिशिएटिव लेते होंगे। और इस इनिशिएटिव लेने का नाम ही तफरी, क्योंकि जब इंसान इनिशिएटिव लेगा तो उसको मेंटली तौर पर सुकून, कुछ अचीवमेंट होगी कि मैंने कुछ किया। वरना अगर आप देखें कि एक खातून जो मुस्तकिल घर में है और बनिस्बत उसके के जो दूसरी खातून के जो थोड़ी एक्टिव है, आप खुद महसूस करेंगे कि उसकी सेहती जिंदगी, उसकी लाइफस्टाइल उस खातून के नस्बत के जो सिर्फ अपने आप को घर तक महदूद रख देती है, आपको बहुत ज्यादा हेल्दी नजर आएगी। उसके बच्चों की तरबियत भी, उसके घर का माहौल भी, क्योंकि इस्लाम ने रोका नहीं है। इस्लाम ने यह नहीं कहा कि आपने चार दीवारी के अंदर रहना है, बल्कि चार दीवारी से बाहर जब जाए तो तब भी उसने अपने तकद्दस को रखना है। इस्लाम के जो क्राइटेरिया है उसको फोकस रखें। ये लिबास चाहिए, ये अंदाज चाहिए, ये ख्याल चाहिए, ये गुफ्तगू चाहिए। अगर उसी पराये के अंदर है तो फिर आप लीडिंग करने वाले लोगों में से होंगे।
बिल्कुल सही। और जैसे आपने पहले तस्करा किया कि यहाँ पर इस हद तक सिक्योर जो है एकोमोडेट किया जाता है, आपको सहूलतें दी जाती हैं कि सिक्योरिटी के कैमरे भी बंद कर दिए जाते हैं, जो कि मेरे नज़दीक एक और नया इशू है हेल्थ एंड सेफ्टी। यहाँ पे उसको बड़ा जो है वो हर चीज़ में, किसी जॉब के लिए भी जा रहे हैं तो पहला इंट्रोडक्शन आपको हेल्थ एंड सेफ्टी के असूलों के बारे में दिया जाता है, लेकिन सिर्फ इन्होंने ख़वातीन को सहूलत देने के लिए उस पर भी, उसका भी हल निकाल के उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। महक, मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर कभी आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया हो कि आपको महसूस हुआ हो कि हाँ, मुझे इस कंट्री में बहैसियत मुसलमान उतनी ही प्रोटेक्शन हासिल है जितनी शायद मुझे किसी इस्लामी मुल्क में हो।
कोई ऐसा पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं रहा है, लेकिन अमूमी तौर पे जो आप देखते हैं और जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो मेरा मुशाहिदा है वो तो ये कहता है कि इस मुल्क में इतनी आज़ादी तो है कि आप کو اتنا تحفظ اور اتنے حقوق دیے جاتے ہیں جو کہ یہاں کے رہنے والے شہریوں کو یا اس مذہب سے تعلق رکھنے والوں کو کہ جو اس ملک کا ہے ان کو ملتے ہیں. کیونکہ جس طرح سے جتنی آزادی کے ساتھ ہم اپنی دینی رسومات کو انجام دیتے ہیں, مثال کے طور پہ ایام اعضاء ہوئے اور جلوس مجلس, اسی آزادی کے ساتھ, اس کے علاوہ جو چیز مجھے بہت اچھی لگی یہاں آ کے کہ جو ہمارے تہوار ہیں وہ اسی جوش و خروش کے ساتھ ہم یہاں پہ منا سکتے ہیں. جیسے ابھی ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہوگا اور اس سے پہلے ہی بازاروں میں مختلف جگہ پہ رمضان سیل شروع ہو جاتی ہے. تو
گھریلو خواتین کا تذکرہ کیا آپ نے, تو میں چاہوں گا کہ زہرا زیدی صاحبہ آپ سے اس بارے میں جو ہے وہ جواب لوں کہ ایک مسلمان خاتون کو معاشرتی اور مذہبی حوالے سے کئی اقدار کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے اور ملحوظ خاطر انہیں رکھنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ اگر ان کے بچے ہیں تو وہ بھی انہیں لک آفٹر کرنا ہے, ہسبینڈ شام کو آتے ہیں تو ان کے لیے بھی جو ہے کچھ نہ کچھ ریڈی کرنا ہے. تو آپ کیا نہیں سمجھتی کہ ان تمام چیلنجز میں بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ اپنے لیے کوئی ٹائم نکال سکیں؟
بہت شکریہ حسین مہدی. جہاں آپ نے کہا کہ خواتین, لیکن اسلام میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام میں تو یہ کہ ساری ذمہ داری مرد کی ہے.
صحیح.
کہ
میں نے معاشرتی اسی لیے کہہ دیا کہ معاشرے میں اس طرح کا ہے,
معاشرے میں جب یہ, تو یہ معاشرہ اور اسلام کے تقاضے الگ الگ ہیں, لیکن یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر خاتون کامیاب وہی ہے کہ جو اپنے گھر کے نظام کو بھی, اپنے معاملات کو بھی, اپنے بچوں کو بھی اگر ٹائم دے, ساتھ ساتھ اگر وہ ہیلدی ہے تو اس کا گھر کا ماحول بھی رہے گا. تو اسے اپنے گھر کے اچھے ماحول کے لیے ہر حال میں اپنے اوپر ٹائم اور توجہ تفریح کی صورت میں, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہاں پر کچھ لوگ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں کچھ گیپ چاہیے ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے باہر جائیں, ریفریشمنٹ ہو,
ہالیڈیز
پہ چلے جاتے ہیں کہ جو ایک ماحول سے نکل کر تھوڑی دیر کے لیے جو زندگی ایک روٹین پر جا رہی ہے, تھوڑے سے ہٹ کر تھوڑے سے فریش ہو کر آ جائیں. تو اس میں صرف خاتون ہی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر اہل خانہ مرد بھی ہیں اور خاتون بھی, کہ دونوں یہ ڈیسیژن لیں کہ ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو کیسے رکھنا ہے. مرد بھی اہل دی ایٹماسفیئر میں کام کرے اور خاتون بھی, تو دونوں کو بریک کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو پھر وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایسے سیٹ اپ میں لا سکتے ہیں کہ عورت کو بھی ٹائم ملے اور مرد کو بھی ٹائم ملے.
صحیح, بہت بہت شکریہ. مہک, اگر آپ کچھ کہنا چاہیں گی کوئکلی, کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک منٹ رہ گیا.
میں صرف ایک جملہ بس یہاں پہ یہ کہوں گی کہ جیسے گھریلو خاتون کی بات کی, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے, یا وہ اپنی زندگی میں بھی ہمیں ان کی سیرت میں نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کو تقسیم کیا ہوا تھا. گھر کے کام کے لیے الگ وقت تھا, باہر کے کام کے لیے الگ وقت تھا, اپنے آرام اور سکون کا وقت بھی انہوں نے معین کیا ہوا تھا, اور عبادت کا بھی ایک وقت تھا. تو اگر ہر چیز اپنے وقت پہ انجام دی جائے تو اس کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے.
بہت بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا گفتگو میں شریک ہونے کا. اور جو میں آخر کرتا ہوں آپ لوگوں کی گفتگو سے وہ یہی ہے کہ چاہے آپ کہیں پہ بھی رہ رہے ہیں, بلکہ مغربی معاشرے میں برطانیہ جیسے ملک میں مسلم خواتین کے لیے بے انتہا تفریحی سہولیات موجود ہیں. صرف یہ کہ آپ کو تھوڑا سا ڈسپلن ہو کے اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. خواتین و حضرات, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.